نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، الله تعالى شأنه كا انتہائی درجے لطف و کرم ہوا کہ اس نے ان تنگ حالات میں بھی ہمارے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے اور ہمیں اساتذہ اور طلبہ، معلمات اور طالبات کو دور کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائی. اللہم لک الحمد ولک الشکر. دور کے زمانے میں جو اچھائیاں نصیب ہوئیں، جو توفیقات ملیں، محنت کا جذبہ رہا اور فہم اور حافظہ کی عنایتیں اللہ کی طرف سے ہوتی رہیں، ان پر ہم اللہ تعالیٰ شانہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں. اور اگر فہم اور حافظہ میں کوئی کمزوری نظر آئی تو ہو سکتا ہے کہ ہماری کسی معصیت کی وجہ سے ہو، اور اسی طرح جو سستی غفلت نظر آئی وہ بھی ہو سکتا ہے کسی بے ادبی کی وجہ سے یا کسی معصیت کی وجہ سے ہو. اور پھر طلب علم میں سستی کرنا یہ ایک مستقل کوتاہی ہے. تو ہم صمیم قلب سے، دل کی گہرائی سے اس پر اللہ تعالیٰ شانہ سے معافی مانگتے ہیں. اور میری تمام طلبہ اور طالبات کی خدمت میں گزارش ہے کہ آج دو رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، اور صلاۃ التوبہ پڑھ کر طلب علم کے سلسلے میں جو آج تک کوتاہیاں ہوئیں اور اللہ تعالیٰ شانہ کی اطاعت میں جو کوتاہیاں ہوئیں، ان سب سے صدق دل سے توبہ کر لیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مومن کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر وقت کوتاہیوں سے اور گناہوں سے بچنا چاہیے تاکہ وہ کوتاہیوں اور گناہوں کے وبال سے پاک صاف رہے، محفوظ رہیں. اور اگر کوتاہیاں ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو ان سے توبہ کر لینی چاہیے تاکہ جو وبال آ چکا ہے یا آ رہا ہے اس سے وہ بچ سکے، اس سے محفوظ رہ سکے. لیکن جب ہمارے سامنے کوئی اہم کام ہو تو اس میں بھی یہ کوتاہیاں اور یہ گناہ جو ہے وہ وبال کی شکل میں ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس لیے ایک مومن کے ایمان کا تقاضا تو ہے ہی کہ وہ ہر وقت گناہوں سے، کوتاہیوں سے پاک صاف رہے، اگر ہو جائے تو وہ توبہ کرے. لیکن وہ طلبہ اور وہ طالبات جو امتحان لکھنے والے ہیں، انہیں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ شانہ سے کوتاہیوں کی اور گناہوں کی مغفرت طلب کرنی چاہیے تاکہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی نصرت شامل حال ہو جائے. تو سب سے پہلا کام امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے جو کرنا ہے وہ صدقے دل سے توبہ. اس لیے کہ جب گناہوں کی آلودگیاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے نصرت نہیں آتی، اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے نصرت نہیں آتی. اور اگر کوئی شخص سستی، غفلت، کوتاہی والی زندگی گزارتا ہے، گناہوں کی آلودگیوں میں رہتا ہے، اس کے باوجود وہ خدا داد حافظے کی وجہ سے، اللہ کے دیے ہوئے حافظے کی وجہ سے، اللہ کی دی ہوئی ذہانت کی وجہ سے اول نمبر سے پاس بھی ہو جاتا ہے، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ظاہراً میں کامیاب ہوا ہوں، باطناً میں کامیاب نہیں ہوا. آگے جا کر کے مجھ سے علم دین کی خدمت نہیں لی جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ میں گمراہی کا پرچار کرنے والا بھی بن جاؤں، ہو سکتا ہے کہ علم پر عمل کی مجھے توفیق نہ ملے. اعاذنا اللہ من ذلک. اس لیے میرے عزیز طلبہ اور میری عزیز طالبات، میری آپ سب سے اور اپنی ذات سے بھی یہ درخواست ہے کہ ہم ہر وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے، اور ہماری ظاہری زندگی میں جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے اس پر باطن کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، بلکہ اصل کردار ہی باطن کا ہوتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ شانہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، لہو مواقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں جو اس کی حفاظت میں لگے ہوئے رہتے ہیں، اور وہ باری باری آتے ہیں، شفٹ ان کی بدلتی ہے، تو دن والے اوپر چلے جاتے ہیں، رات والے آ جاتے ہیں، رات والے اوپر چلے جاتے ہیں، دن والے آ جاتے ہیں. یحفظونہ من امر اللہ. اور آگے پھر ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. عموماً اس آیت کا استعمال جو ہے لوگ غلط جگہ پہ کرتے ہیں, یعنی وہ بھی اپنی جگہ پر بات برحق ہے کہ جب تک ہم اپنی حالت کو درست نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ تعالی ہماری حالتوں کو درست نہیں کرے گا. یہ کورونا وائرس آ گیا ہے تو حالت بگڑ گئی, اب جب تک ہم اپنی حالت کو درست نہیں کریں گے, گناہوں سے توبہ کر کے نیکیوں کی طرف نہیں آئیں گے, معصیت سے دور رہ کر کے طاعت کی طرف نہیں آئیں گے, اس وقت تک اللہ تعالی شانہ ہماری اس بگڑی ہوئی حالت کو کورونا وائرس کو ہٹا کر درست نہیں فرمائیں گے. یہ بات تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے لیکن اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ آیت جو ہے یہ تو دفع دخل مقدر ہے. لہو مواقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اللہ مقام امتنان میں فرما رہے ہیں کہ بھائی میں نے کچھ ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں جو باری باری آتے ہیں, 24 گھنٹے تمہارے ساتھ رہتے ہیں اور تمہاری حفاظت کرتے ہیں. یہاں تک کہ روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب چلتا ہے تو خود قدم نہیں اٹھاتا, ایسے فرشتے مقرر ہیں جو اس سے قدم اٹھواتے ہیں تاکہ قدم جو ہے وہ غلط جگہ پہ نہ پڑ جائے, ورنہ انسان جب بھی چلتا ہے تو نیچے دیکھ کر نہیں چلتا, اوپر دیکھ کر کے چلتا ہے, دائیں بھی دیکھتا ہے بائیں بھی دیکھتا ہے. حالانکہ جو شرعی تقاضا ہے وہ تو یہی ہے کہ انسان جب چلے تو نیچے نگاہ رکھ کر چلے, اور جب ضرورت پڑ جائے اس وقت جس جہت میں دیکھنے کی ضرورت پڑے اس جہت میں دیکھے, اس سے جو ہے وہ نظر سے حفاظت ہو جائے گی بد نظری سے. تو دو شکلیں ہیں نا, ایک تو یہ کہ ہم دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے دیکھتے چلیں, اور جب کسی غلط جگہ پہ ہماری نظر پڑ جاوے, چاہے مرد ہو یا عورت جو بھی دیکھ رہا ہو, تو پھر نگاہ نیچی کرنے کی کوشش کرے, تو ایک مصیبت میں پھنس گیا, اس سے نکلنا بہت مشکل ہے. اور دوسری شکل یہ کہ نیچے دیکھ کر کے چلے. اکیڈمی کی مسجد سے نکل کر بورڈنگ میں جانا ہے تو دوسرا کوئی کام نہیں ہے, دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنا, راستہ بھی معلوم ہے تو نیچے دیکھ کر کے چلتا رہے, اور جب وہ اسٹریٹ کے پاس پہنچے جہاں کراسنگ ہے تو اس وقت دائیں اور بائیں دیکھ لے کہ کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی ہے, پھر نیچے دیکھ کر کے چلے. صوفیاء کرام جو ہے ان کے یہاں یہی چیز نظر آتی تھی, اور ہمارے اسلاف کے یہاں بھی یہی چیز نظر آتی تھی, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ حکم فرمائے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں. قل للمؤمنات یغضن من ابصارہن, اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. تو اصل تو نیچی نگاہ رکھ کر کے چلنا چاہیے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم, آگے دیکھیں گے تو بھی گڑبڑ, ومن خلفہم پیچھے دیکھیں گے تو بھی گڑبڑ, وان ایمانہم دائیں طرف دیکھیں گے تو بھی گڑبڑ, وان شمائلہم بائیں طرف دیکھیں گے تو بھی گڑبڑ. اس نے کہا کہ میں چاروں جہت سے آؤں گا, اور نیچے سے میں اس لیے نہیں آتا کہ اس میں میری سبکی ہے, بہت بڑا متکبر ہے نا, میں نیچے کی طرف سے نہیں آؤں گا, اور اوپر سے اس لیے نہیں آ سکتا کہ اوپر سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, تو رحمتوں کے نزول کے باوجود اس کو اگر اوپر سے آنے کی قدرت دی جائے تو پھر رحمت کی حیثیت ہی کیا رہی. تو بچنے کے دو ہی طریقے ہیں, ایک تو نیچے دیکھ کر کے چلو یا اوپر دیکھ کر کے چلو. اب اوپر دیکھ کر کے چلیں گے تو ٹھوکر کھانے کے امکانات ہے, اس لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ نیچے دیکھ کر کے چلو, اس میں نظر کی حفاظت ہے. تو دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں دیکھنا چاہیے, نیچے نگاہ کر کے دیکھنا چاہیے. تو ہم لوگ جو ہیں الٹا کرتے ہیں کہ بد نظری سے بچنا بھی چاہتے ہیں مگر دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے دیکھتے چلتے ہیں, حالانکہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اور یوں بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے کہ ایک شخص جو ہے وہ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ کر کے چل رہا ہے, اور ایک جو ہے نیچے نگاہ کر کے چل رہا ہے. تو ایسے دو آدمیوں کو آپ دیکھیں گے تو کس کے بارے میں ہولینس کا اور پاکیزگی کا اور وقار اور عزت کا زیادہ تصور دل میں پیدا ہوگا؟ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نیچے دیکھ کر کے تو اکثر لوگ نہیں چلتے, سامنے دیکھ کر چلتے ہیں, زیادہ سے زیادہ محتاط ہوتے ہیں, وہ بھی سامنے دیکھ کر چلتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا, خود بھی محسوس کیا ہوگا کہ باتیں کرتے کرتے چل رہے ہیں, سامنے دیکھ کر چل رہے ہیں, لیکن درجنوں مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے کوئی چیز ہوتی ہے تو اچانک اس کی طرف توجہ ہماری ہو جاتی ہے اور پاؤں یوں ہٹ جاتا ہے. तो पांव हटता है उस वक़्त हम नीचे देखते हैं, ये फरिश्ते हमारी हिफाजत करते हैं और हमें चलाते हैं। तो इस पर फिर ये इश्काल पैदा होता है कि लहू मुअक्किबातुम मिन बैनि यदिही व मिन खल्फिही यहफ़ज़ूनहू मिन अम्रिल्लाह, कि जब फरिश्ते हमारी इतनी ज़्यादा हिफाजत करते हैं तो फिर ठोकर क्यों लग जाती है, फिसल क्यों जाते हैं। इसी तरह दूसरे तमाम उमूर में कि फरिश्ते जब हमारी हिफाजत करते हैं और अल्लाह ने उनको हमारी हिफाजत के लिए मुकर्रर किया है तो हमें हादिसात क्यों पेश आते हैं, तो उस पर एक इन्नल्लाह ला युगैरु मा बिकौमिन, कि अल्लाह ताला शानहु उस हालत को जो लोगों के साथ है उसे नहीं बदलते। इसका मतलब है कि लोगों की जो अच्छी हालत है, सेफ्टी की हालत है, हिफाजत की हालत है, उसे नहीं बदलते। हत्ता युगैरु मा बि अनफुसिहिम, यहाँ तक कि वो अपनी उस इतात वाली हालत को नहीं बदलते जो उनके साथ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बंदे इतात की हालत को बदल कर मासियत की हालत में चले जाते हैं तो फिर अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु की तरफ से हिफाजत और नुसरत हट जाती है। असल इस आयत का मतलब ये है। तो दुनिया में जो कुछ भी हमारे सामने पेश आता है, चाहे वो अच्छी हालत हो चाहे बुरी हालत हो, उसका कोई ना कोई सबब होता है। एक सबब ज़ाहिर होता है और एक सबब बातिन। तो सबब ज़ाहिर जो है उस पर मुअस्सिर होता है सबब बातिन। पहला सबब, पहले सबब बातिन वजूद में आता है, उसके बाद सबब ज़ाहिर। तो मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है उसे फ्लू हो गया, फ्लू हो गया, बुखार हो गया, तो उससे आप पूछेंगे कि भाई अचानक आपको फ्लू और बुखार हो गया, कि अरे यार बात छोड़ो ना, मौसम ठंडा था, घर वालों ने बहुत कहा कि कोट पहन के जाओ, लेकिन मैं जल्दी जल्दी में नमाज़ पकड़ने के लिए निकल पड़ा, मैं जल्दी जल्दी में बस पकड़ने के लिए निकल पड़ा और मूसलाधार बारिश हुई और उसमें भीग गया। ये तो ज़ाहिर ही सबब है। लेकिन ये जो कोट पहनना भूल गए या बेपरवाही की कोट पहनने के बारे में, उसके लिए एक सबब बातिन है। आज कोई गुनाह हो गया होगा, कल कोई गुनाह हो गया होगा, जिसकी वजह से ये सबब ज़ाहिर वजूद में आया। लेकिन अब ये सारी बातिन की बातें हैं, इसलिए तो आखिरत में ही जाकर के मालूम होगी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई अल्लाह का नेक और बरगुजीदा बंदा होता है, वो बीमार हो गया, तो हो सकता है कि कोई गुनाह सगीरा हो गया हो सकता है गुनाह कबीरा भी एकाद हो गया हो और अल्लाह ताला शानहु उसे यहीं धो देना चाहते हैं। और ये भी हो सकता है कि उसकी किसी नेकी से अल्लाह इतना खुश हुआ है कि उस नेकी की वजह से ये ज़ाहिरी सबब वजूद में आया कि बारिश बहुत हुई और उसे बुखार हो गया और बुखार के नतीजे में सब्र की तौफीक मिली और रफ़े दर्जात हो रहे हैं। ये भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक शख्स जो है वो इम्तिहान में बहुत अच्छे नंबरात से पास हो गया, और पास इसलिए हुआ कि हाफिज़ा बहुत कवी हो गया, फहम बहुत तेज़ हो गई अचानक ही, और बहुत नुसरत अल्लाह की हुई, तो किसी नेकी की का असर हुआ। और ऐसा भी हो सकता है कि बदियों में इतना लतपत था कि अल्लाह जल्ल जलालहु व मनवालहु ने उसे सज़ा देने के लिए हाफिज़े को बरकरार रखा, फहम को भी बरकरार रखा, ताकि अव्वल नंबर से पास होकर किब्र की बीमारी में मुब्तला हो जाए। तो ये चीज़ें जो है वो ज़ाहिर और बातिन दो चीज़ें हैं। हमारी नज़र सिर्फ ज़ाहिर पर होती है, बातिन पर नहीं। तो ये अपने दिल दिमाग में बिठाओ। माँ बाप की दुआ, माँ बाप की रिज़ा, ये बातिन की चीज़ है। असातिदा की दुआ, तवज्जुहात, ये बातिन की चीज़ें हैं। ये बातिनी असबाब है जो हमें नज़र नहीं आते कि माँ बाप क्या कर रहे हैं हमारे लिए, असातिदा क्या कर रहे हैं, इसी तरह हमारे मशाइख अहलुल्ला हमारे लिए क्या कर रहे हैं, या ये कि हम उनको जो नाराज़ कर रहे हैं और उनकी नाराज़गी की वजह से क्या क्या नुकसान हमारी ज़िंदगी में हो रहे हैं, किन किन नेमतों से हम महरूम हो रहे हैं, उसका हमें अंदाज़ा नहीं होता। गफलत में पड़ जाते हैं, सोए रहते हैं, नमाज के लिए नहीं उठते, नमाज कज़ा हो जाती है, तिलावत की तौफीक नहीं मिलती, ज़िक्र की तौफीक नहीं मिलती, तो हम ऐसा सोचते हैं कि आज जो है ज़रा सुस्ती तारी हो गई और इस वजह नहीं, इसका कोई सबब होता है। تو امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے ظاہری سبب محنت ہے اور باطنی سبب نصرت الہیہ ہے. اس لیے سب سے پہلا کام جو آپ حضرات کو اور ہماری طالبات کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ توبہ ہر امتحان کے موقع پر, اور جب بھی کوئی مشن ہمارے سامنے آ جائے, کوئی اہم کام آ جائے, کوئی اہم فیصلہ کرنا ہو, تو توبہ استغفار, اللہ تعالیٰ شانہ سے پکا وعدہ کہ اللہ نافرمانی نہیں کروں گا, سب سے پہلے یہ ہو. زندگی میں جب بھی کوئی موڑ آ جائے, کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہو, کوئی گھر خریدنا ہو, کہیں میں دھوکہ نہ کھا جاؤں, بچے کی شادی کرانی ہے دھوکہ نہ کھا جاؤں, بیٹی کی شادی کرانی ہے دھوکہ نہ کھا جاؤں, کسی استاد کا تقرر کرنا ہے دھوکہ نہ کھا جاؤں, کسی مدرسے میں میرا تقرر ہو رہا ہے دھوکہ نہ کھا جاؤں, فلاں جگہ نوکری کی چوائس ہے دھوکہ نہ کھا جاؤں. توبہ استغفار, تاکہ دل پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے رہنمائی الہام ہو اور غلطی سے ہم بچیں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو توبہ کرنے کی تلقین ہے میری طرف سے. اور توبہ کے بعد, چونکہ توبہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ گناہوں کے وبال سے بچ کر امتحان میں کامیاب ہو جاؤں, اللہ کی نصرت کا مستحق ہو جاؤں, تو پھر اس کے بعد تقوی کی ضرورت ہے. آج آپ نے توبہ کر لی اور پھر گناہ میں مشغول رہے امتحان کے دوران, تو کیسے کامیابی ہوگی؟ تو توبہ کرنی ہے, اور توبہ کرنے کے بعد پھر تقوی کے ساتھ رہنا ہے. تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں پھر اللہ کی نصرت آئے گی, اور اللہ کی جب نصرت آئے گی, اللہ کی جب توجہ ملے گی, اللہ کی رحمتوں کا آپ مورد بن جائیں گے, تو ظاہری طور پہ چاہے آپ امتحان میں کامیاب ہوں یا نہ ہوں, آپ کامیاب ہی ہیں. اور اگر معصیت والی زندگی ہے اور آپ اللہ کی رحمت کے مورد نہیں ہیں, تو ظاہری اعتبار سے آپ چاہے اعلیٰ نمبرات سے پاس ہو جائیں اور کامیاب ہو جائیں, آپ ناکام ہیں جب تک کہ آپ توبہ کر کے اللہ سے اپنا رشتہ استوار نہ کر لیں. تو توبہ تقوی, تقوی توبہ, توبہ تقوی, تقوی توبہ, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہے وہ اپنے بڑوں سے دعائیں کرانا, اور دل سے اعتقاد کے ساتھ دعائیں کرانا. ایسے ہی وہ ایک رسمی ٹیکسٹ ہوتا ہے, رسمی درخواست ہوتی ہے کہ امی دعا کرنا, وہ نہیں, اعتقاد کے ساتھ کہ میری ماں اور میرے باپ کا کی دعا میرے لیے بہت مقبول ہوتی ہے, میرے استاد کی دعا مقبول ہوتی ہے, میرے شیخ کی دعا مقبول ہوتی ہے, یہ فلاں میرے خاندان میں نیک عورت ہے, نیک بزرگ ہے, نیک آدمی ہے, میری بستی میں نیک آدمی ہے. ابھی میں نے مولانا احمد صاحب سے کہا کہ میں نے کہا کہ بھائی چند بزرگان دین جن کا بہت ہی قرب والا ہم سے تعلق ہے, اکیڈمی پر بہت شفقتیں فرماتے رہتے ہیں, میرے اوپر بھی بہت شفقتیں فرماتے ہیں, میں نے کہا ان کو فون کرو اور فون کر کے کہو کہ آئندہ کل ہمارے طلبہ اور طالبات کے امتحانات شروع ہو رہے ہیں, آپ ان سب کے لیے دعائیں کیجیے, دعائیں, اس کے ہم محتاج ہیں, دعائیں کروائیں. اور دعائیں کرانے کے بعد پھر تیسرے نمبر پر جو کام آپ کو کرنا ہے وہ ہے بہت زیادہ محنت کرنی ہے, وقت کو ضائع کیے بغیر اپنے آپ کو محنت میں کھپانا ہے. اور اب کل سے امتحان شروع ہو رہا ہے, تو اب جو ہے ساری کتابوں کو تو دیکھنا نہیں ہے, سامنے جس کتاب کا امتحان ہے بس اس کے پیچھے لگ جاؤ اور خوب محنت کرو. اور امتحان کے لیے محنت کرتے ہوئے اچھی اچھی نیتیں کرو. ایک نیت تو یہ کرو کہ میں امتحان کے لیے اس لیے محنت کر رہا ہوں کہ امتحان کے بہانے سے میرے طلب علم میں اضافہ ہو جائے گا. اب آپ پاس ہوں فیل ہوں, صحیح محنت کریں گے طلب علم کے سارے فضائل آپ کو حاصل ہوں گے جتنے گھنٹوں تک محنت کریں گے. پھر یہ نیت کریں کہ اگر اچھے نمبرات سے پاس ہوں گا تو فطری چیز ہے کہ ماں باپ کا دل خوش ہوتا ہے, اساتذہ کا دل خوش ہوتا ہے, بڑوں کا دل خوش ہوتا ہے, تو اس سے جو ہے مجھے یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے, ادخال السرور علی المسلم بہت بڑی نیکی ہے, وہ من احب الاعمال ہے. تو پھر ماں باپ کو خوش کرنا, اساتذہ کو خوش کرنا, اپنے مشائخ کو خوش کرنا, خاندان کے بزرگوں کو خوش کرنا. اور تیسری بات یہ ہے کہ فطری چیز ہے کہ جب اچھے نمبرات سے کوئی بھی طالب علم طالبہ پاس ہوتی ہے تو ماں باپ کی دعائیں بھی نکلتی ہیں, اساتذہ کی دعائیں بھی نکلتی ہیں, مشائخ کی دعائیں بھی نکلتی ہیں, تو میں دعاؤں کا مستحق ہونا چاہتا ہوں. اگر یہ نیتیں ہوں گی تو کمزور سے کمزور طالب علم بھی محنت کرے گا, कमज़ोर से कमज़ोर तालिबा भी मेहनत करेगी, इसलिए कि आला नंबरात से पास होकर अगर मैं माँ बाप की दुआ और असातिदा की दुआ का मुस्तहिक न बन सका न बन सकी तो कम से कम तलब इल्म की फजीलत तो मुझे मिल रही है। मेरे इतने सारे घंटे तलब इल्म में गुजर रहे हैं, और जाहिर है कि जब इम्तिहान के बहाने से तलब इल्म में हमारा वक्त गुजरता है तो कुछ ना कुछ इस्तेदाद में भी फ़र्क आता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इम्तिहान के ज़माने में इल्म की मेहनत से इल्म के साथ एक मुनासबत पैदा हो जाती है, चस्का लग जाता है। ऐसे बहुत तलबा है कि इम्तिहान की बरकत से उनको चस्का लग गया। और आप लोगों को अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह इल्म का चस्का लगा दे, इल्म की मिठास अता फरमा दे, इल्म की न बुझने वाली प्यास अता फरमा दे, इल्म की न मिटने वाली भूख अता फरमा दे। मकबून फिल ये हरीस मनहूमान, मनहूम फिल इल्म बना दे, मनहूमान लाइशबान, मनहूम फिल इल्म, मनहूम फिल दुनिया। ए अल्लाह मनहूम फिल दुनिया मत बनाना, मनहूम फिल इल्म बना दे, हरीस फिल दुनिया नहीं, हरीस फिल इल्म बना दे। तो दुआएं भी करनी है, तो दूसरों से दुआएं लेनी है। इस वक्त जो है हमारी तालिबात तो चूँकि घरों में ही इम्तिहान के लिए तैयारियां करती हैं, लेकिन हमारे तलबा जो बोर्डिंग में रहते हैं उनको पहली मर्तबा मौका मिल रहा है घरों में रह करके इम्तिहान की तैयारी करने का। तो माँ बाप की दुआएं लेने का बेहतरीन मौका है। आप रात दिन एक कर दो पढ़ने में, ताकि उनके कलेजे को ठंडक पहुंचे कि मेरा बेटा बहुत मेहनत कर रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है। तो अच्छी अच्छी नीयतें भी करनी है, और अच्छी अच्छी नीयतों के साथ फिर खूब इल्म में मेहनत करनी है। ये रिजाए इलाही के ये सारी चीज़ें हैं कि भाई मैं लोगों की दुआएं लेना चाहता हूँ, और लोगों की नेक लोगों की दुआएं, माँ बाप की दुआएं, असातिदा की दुआएं लेकर के दीन में तरक्की करना चाहता हूँ, ये अच्छी नीयत है अल्लाह को राज़ी करने के लिए। इदखाल सुरूर ये बहुत अच्छी नीयत है, किसी को खुश करना अल्लाह को राज़ी करने के लिए, तलब इल्म अल्लाह को राज़ी करने के लिए। तो ये आपके आने वाले जो तकरीबन 8-9 दिन हैं ये बहुत ही मेहनत के साथ गुजरने चाहिए, और इसके अलावा खुद भी खूब दुआएं करें, खूब दुआएं करें, और चलते फिरते भी या तो किताबों की ज़ुबान के ऊपर तकरार हो, मसाइल की तकरार हो, या ये कि ज़िक्रुल्लाह हो, ज़िक्रुल्लाह। और ये भी अर्ज़ कर दूँ कि ज़िक्रुल्लाह जो है, ज़िक्रुल्लाह उसकी भी बहुत बरकत होती है, तिलावत कलाम पाक की भी बहुत बरकत होती है, तिलावत कलाम पाक की भी बहुत बरकत होती है। तो ये तिलावत कलाम पाक का भी बहुत एहतमाम करूँ। 1984 में जब मैं 1983 में जब मैं हज के लिए गया था, तो हज़रत शेख यूनुस साहिब रहिमहुल्लाहु तआला से सबसे पहली मरतबा मेरी मुलाकात ज़िंदगी में हुई। तो हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे ये फरमाया था कि कुरान मजीद की तिलावत का खूब एहतमाम करो, इसलिए कि उससे इल्म में बरकत आती है। तो इम्तिहान के ज़माने में तलबा जो हैं ये इल्म में बरकत की चीज़ें छोड़ देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वक्त ज़ाय होगा। तो जिस तरह खाना ज़रूरी है, इसी तरह ज़िक्र भी ज़रूरी है। मुख्तसर कर दें, 15 मिनट ज़िक्र में मशगूल रहें, 15 मिनट तिलावत में मशगूल रहें। तिलावत तो चलते फिरते भी हो जाएगी, सुन्नतों में नवाफिल में भी हो जाएगी। तो अपने मामूलात को कम करके कुछ ना कुछ ज़रूर करें, और अल्लाह को याद करें। फ़ज़कुरून यज़कुरकुम, अल्लाह की मईयत और अल्लाह की नुसरत और अल्लाह की तरफ से रहमत मिलेगी। वाना माहू इदा धकरनी, मेरा बंदा जब मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। तो एक तो तौबा करनी है, तौबा के बाद तकवे वाली ज़िंदगी इख्तियार करनी है, और दूसरे नंबर पर यह कि अपने बड़ों से दुआएँ करानी है, और तीसरे नंबर पर यह कि मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, ज़िक्र वगैरह का भी अहतमाम करना है, और ख़ुद भी दुआएं बहुत करनी है कि अल्लाह मैं तो गुनहगार हूँ, मेरे गुनाहों की नहुसत की वजह से इस बाबरकत नेमत से मुझे महरूम न फरमा, मुझे हकीकी इल्म अता फरमा, सिर्फ ये नहीं कि नुकुश मुझे याद हो जाए और मैं अव्वल नंबर से पास हो जाऊँ, ना, मुझे हकीकी इल्म अता फरमा और मुझे वारिसीन अंबिया में शामिल फरमा, मुझे उलमाए रब्बानी जिन में शामिल फरमा, मुझे खुद्दाम दीन में शामिल फरमा और क़यामत तक मुझे या मौत तक मुझे इस इल्म से वाबस्ता फरमा और इस इल्म की सही फहम, इल्म में बरकत, इल्म पर अमल और उसके साथ दूसरों तक पहुंचाने के लिए मुझे कबूल फरमा, तदरीस की शक्ल में, दावत की शक्ल में, तबलीग की शक्ल में, तसनीफ़ की शक्ल में, और ये अल्लाह ये इम्तिहान को भी मेरे लिए आसान फरमा, तो दुआ भी खूब करें। ये चंद काम हैं जो आप हजरात को करने हैं, इंशाल्लाह इससे कामयाबी होगी। दूसरी एक बात यह है कि हर फर्ज नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज के बाद जब दुआ से फारिग हो जाते हैं तो दुआ से फारिग होने के बाद 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें और 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर 7 मरतबा, 9 मरतबा, 11 मरतबा, जितनी मरतबा हो सके या अलीमो या अलीमो या अलीमो या अलीमो का विर्द रखें और उसके बाद फिर आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। इसका भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अलीम जो है वो इल्म की राहें हमारे लिए हमवार करेगा। और हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहिब दामत बरकातुहुम ने ये तहरीर फरमाया है कि मुझे मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहिब रहमतुल्लाह अलैह, मेरे वालिद मोहतरम ने मेरी तालिब इल्मी के ज़माने में इम्तिहान में कामयाब होने के लिए एक वजीफ़ा बतलाया था। और हज़रत फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर इम्तिहान में बहुत कामयाबी के साथ पास हुआ। तो वजीफ़ा ये है कि इम्तिहान गाह में जाने के बाद काफ हा या ऐन स्वाद पढ़ना है और हा मीम ऐन सीन काफ पढ़ना है। उसका तरीका ये है कि दायां हाथ जो है, दायां हाथ, तो दाएं हाथ की छोटी उंगली से शुरू करना है और एक हर हर्फ के ऊपर उंगलियों को बंद करना है, पहले छोटी, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली और फिर उसके बाद वाली। तो काफ हा या ऐन स्वाद ये मुट्ठी बन गई अब, और फिर उसी छोटी उंगली से खोलना है हा मीम ऐन सीन काफ, और जब उंगली बंद हो जाए तो चूंकि काफ हाया काफ से शुरू करना है इसलिए उंगलियां बंद होने के बाद बोले कोफी तो मेरी किफायत कर ली गई, यानी इंशाल्लाह उम्मीद है इन हुरूफ़ मुकत्तात की बरकत से। और हामी में एनसीएन काफ के बाद कहे हुमी तो मेरी हिमायत कर दी गई, यानी अल्लाह मेरा हामी हो गया, नासिर हो गया। तो काफ हा या ऐन स्वाद कुफी तो हा मीम ऐन सी, हा मीम ऐन सीन काफ हुमी तो कर लीजिए मेरे साथ आप लोग भी दाएं हाथ की उंगलियों को काफ हा या ऐन स्वाद कुफी तो, और अब उसी को खोलिए छोटी उंगली से हा मीम ऐन सीन काफ हुमी तो। तो जब आपका इम्तिहान शुरू होने वाला हो तो ऐसा कर लीजिए, ये भी एक मुजर्रब चीज़ है बुज़ुर्गों की, अल्लाह ताला शानहु बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए। मेरा ख़ुद का ये मामूल था कि जो कुछ मेहनत करनी होती थी कर लेते थे, मगर इम्तिहान गाह में जाने से पहले 2 रकात पढ़ने की कोशिश करता था, किसी जगह तन्हाई में, किसी क्लासरूम में, दरसगाह में जाकर 2 रकात पढ़ लेता था, आखिरी चीज़ दरसगाह में जाने से पहले, और 2 रकात पढ़कर अल्लाह से कहता था कि अल्लाह याद कुछ नहीं था मगर आपने अपनी कुदरत कामिला से याद करा दी किताब। तो जिस तरह जो चीज़ याद नहीं होती वो आप याद करा सकते हैं, इसी तरह आप जो चीज़ याद होती है उसे भुला भी सकते हैं। तो ये अल्लाह इम्तिहान गाह में जाने के बाद इस मुसीबत से बचा लेना और जो याद करवाया है वो बाकी रखना ताकि मैं इम्तिहान के पर्चे में सही सही बातें लिखूं। अल्लाह ताला शानहु बहुत तौफीक अता फरमावे। तो मैं दोबारा फिर अर्ज़ कर दूं कि सबसे अहम चीज़ तो क्या है, तकवा और तौबा। इसको मैं ज़रा तमसील देकर के बयान कर दूं कि तकवा और तौबा को आप बीज समझिए, सीड। तो तकवा और तौबा सीड नहीं होगा तो दरख्त उगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो तकवा और तौबा सीड है, और सीड है मगर आप प्लांट नहीं करते तो भी कुछ नहीं होगा। तो प्लांट करना ही आपकी मेहनत है। तो ये काफ हाया एन स्वाद किफाय, ये काफ हाया एन स्वाद कोफी तो, और हामी मेम जिनका भूमि तो, और ये या आलिमो या आलिमो या आलिमो, और दूसरों से दुआएं कराना, ये सब कुछ जो है ये पानी डालना है, और ये चारों तरफ से उस प्लांट की हिफाजत करना है कि कोई परे कोई जानवर आकर के खा न जावे, कीड़े न लग जावे। मगर दरख्त ही नहीं है तो ये सारी हिफाजत किस काम की? इसलिए बीज है तकवा और तौबा, और मेहनत जो है वो उसको प्लांट कर देना। प्लांट करके उसके रूट को, यानी प्लांट सीड डाल करके जमीन के साथ उसके रूट लग जावे, ये है मेहनत। अब इसके बाद अगर वो दूसरी चीज़ें करेंगे कि दुआएं करवाएंगे, खुद दुआएं करेंगे, वजीफे पढ़ेंगे, जिक्रुल्लाह का एहतमाम करेंगे, सलातुल हाजा पढ़ेंगे, जब भी किसी की कोई हाजत होती है दिन में कि भाई ड्राइविंग टेस्ट है मेरा, या मेरा ऑपरेशन है, मेरा कोई इंटरव्यू है, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स सूरज निकलने के बाद चार रकात नफल पढ़ता है दो दो की शक्ल में, तो अल्लाह तआला शानहु उसे दो नेमतें अता फरमाते हैं, एक मकबूल हज और उमरे का सवाब, और दूसरा उसके पूरे दिन की जो हाजतें होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो मैं कहता हूँ कि भाई इशराक पढ़ लिया करो, इशराक। और दूसरी बात यह है कि जो शख्स फजर की नमाज के बाद या सुबह के बाद, सुबह को यासिन शरीफ की तिलावत करता है, तो मन करा यासिन फी सदरी नहर कुदियत हवाई जो, उसकी हाजतें पूरी हो जाती है, तो भाई यासिन शरीफ भी पढ़ लो। तो ये वज़ाइफ भी हैं, कुछ आमाल हैं जो कि अहादीस से साबित हैं। तो ये जितने भी काम हैं, तो असल काम क्या है? तकवा तौबा व बीज है। और मेहनत क्या है? वो मेहनत ये है कि वो बीज जो है उसमें से रूट निकलने शुरू हो जावे और ज़मीन को पकड़ ले। ये दो काम अगर आपने किए, और इन दो कामों को करने के बाद फिर वो दरख्त निकले और तनावर दरख्त हो जाए, फलदार हो जाए, मुसमिर हो जाए, उसके लिए वो दूसरे सारे काम करने हैं। दुआएं करनी है, दुआएं करानी है, वज़ाइफ पढ़ने हैं, जिक्र का एहतमाम करना है, इससे इंशाल्लाह जो है वो बहुत बरकत होगी। अल्लाह ताला शानहु आपको बहुत बरकत दे, बहुत कबूल फरमावे। अब जो कमज़ोर तलबा और कमज़ोर तालिबात हैं, और इस वक्त जो है सब अपने अपने घरों में हैं, तो तकरार वगैरह भी उस दर्जे की नहीं हो पाती जो यहाँ रह कर के हो सकती है, तो आप फिक्र न करें। जितना हो सके, यानी आपका कॉन्शियंस ये कहे कि मेरे बस में जितना था वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया, तो आपको मार्क्स मिले ना मिले आप कामयाब हैं। और दूसरी बात ये है कि वो तलबा जो ज़हनी तौर पर कमज़ोर नहीं है, इस्तेदाद भी उनकी अच्छी है, लेकिन सुस्ती गफलत के शिकार रहे हैं, तो वो क्या करें? तो उनके लिए ये है कि तकवा तौबा, तौबा करो, और तौबा करने के बाद अब जो है मेहनत कर लो। एक तालिब इल्म से मैं अभी पिछले दो तीन दिन पहले कह रहा था, या कुछ तलबा से मैं कह रहा था कि देखो एक बात जहन में रखो कि एक तालिब इल्म जो है वो इम्तिहान के दौर के दौरान बिल्कुल कुछ नहीं करता, और आखिरी आध घंटा बाकी रह गया है और उसके दिल में ख्याल आएगा यार कुछ किताब देख लूँ, वो जलालैन शरीफ पढ़ता है, मिशकात शरीफ पढ़ता है, 200-300 सफ़े का इम्तिहान देना है, अब आध घंटे में क्या होगा? तो मैंने कहा जो इम्तिहान में पास होने के लिए और मार्क्स हासिल करने के लिए करेगा वो बैठ जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला शानहू जब दिल में ये ख्याल डालते हैं तो आपको फ़ौरन वज़ू करके किताब लेकर बैठ जाना चाहिए। अगर आप इम्तिहान में 0 मार्क्स से फेल हो गए तब भी आपको ये फ़ायदा हुआ कि 30 मिनट या 20 मिनट हदीस का शुगला आपको नसीब हो गया। इल्म का शुगल 1 मिनट के लिए नसीब हो जाए वो दुनिया व माफिया से बेहतर है। इसलिए जिन लोगों ने दौर में भी सुस्ती की है, कुछ होते हैं हर मदरसे में, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में, उनकी खिदमत में भी गुजारिश है कि आप जो है अपने आप को खूब लगाएं। अल्लाह ताला शानुहू बहुत बरकत दे। और इम्तिहान चूँकि उसकी नौईयत इस मरतबा बहुत अलग है, इसलिए इस मरतबा इल्म की भी का भी इम्तिहान है और दियानतदारी का भी इम्तिहान है, दियानतदारी का भी इम्तिहान है। इस वक्त जो है इल्म और दियानतदारी दोनों हम सीख रहे हैं। हमारी जो तालिबात पढ़ रही हैं तो न उस्तानियाँ उनको देख सकती हैं, न तालिबात उनको देख सकती हैं। तो वो उधर तालिबा लॉगिन करके क्या कर रही है वो कुछ पता नहीं। तो देखो, आपकी दियानतदारी का इम्तिहान हो रहा है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है मगर अल्लाह मुझे देख रहा है। आपकी जो उम्रें हैं, मेरी तालिबात, मेरी अजीज़ तालिबात, आपकी जो उम्रें हैं उससे बहुत छोटी उम्र की एक बच्ची थी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह उन्हों के दौर में, जो दियानतदारी में बहुत आला मकाम रखती थी। और उसकी उस दियानतदारी की बरकत से अल्लाह ताला शानहू ने उसकी नस्ल में उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ पैदा करके उम्मत को बतौर एक नेमत के दिया, उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ रहिमहुल्लाह ताला। तो उसकी दियानतदारी क्या थी, उसकी माँ ये कह रही थी कि बेटी दूध में ज़रा पानी मिला दो, इसलिए कि दूध में वो मिल्क वुमन थी, वो बेचती थी दूध। तो 10 लीटर दूध में अगर 1 लीटर और बढ़ा दिया तो लोगों को तो पता चलेगा नहीं, लेकिन 1 लीटर जायद का पैसा हमें मिल जाएगा। तो उसने कहा कि ना, अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है कि अमीरुल मोमिनीन थोड़े ही देख रहे हैं। तो उसने कहा कि इनका न उमर उला यरानी फ़इलाहु उमर यरानी, उमर नहीं देख रहा मगर उमर का अल्लाह तो देख रहा है। तो आप ये देखें कि आपा नहीं देख रही है मगर आपा का रब तो मुझे देख रहा है। और मैं मेरी ज़िंदगी में, मेरे इल्मी सफ़र में कामयाब होती हूँ या नाकाम, उसका फ़ैसला उस्तानी नहीं करेगी, उस्तानी का रब करेगा। तो जिसके हाथ में मेरा फैसला है वो तो मुझे देख रहा है। तो अभी दौर के ज़माने में जो है वो दोनों इम्तिहानात आपके हो गए, दियानतदारी का भी और ये इल्म का भी। और अब इम्तिहान होगा तो भी दियानतदारी का और इल्म का, इसलिए कि इंटरनेट से सारे काम हो रहे हैं। और फिर उसके बाद जब असबाक शुरू होंगे, इसलिए कि अगर मजबूरी रही तो पानी ना हो तो तैमुम की तरफ जाना ही पड़ता है। हालांकि हत्तल इम्कान कोशिश यही होनी चाहिए पूरी की पूरी कि आमने सामने बैठ करके पढ़ा जाए, ताकि नुकूश हरूफ के साथ नूर भी असातिदा की सोहबत से मुंतकिल होता रहे। फिर एक क्लास के अंदर 25 तालिब इल्म होते हैं तो उसमें भी बड़े अल्लाह वाले होते हैं, बाज़ लोग तालिब इल्मी के ज़माने से ही अल्लाह वाले होते हैं। हज़रत मुफ्ती महमूद साहिब रहमतुल्लाहि अलैह और हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहिब रहमतुल्लाहि अलैह, इन दोनों बुज़ुर्गों का किस्सा मैंने मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अकदस मौलाना मोहम्मद यूसुफ मुताला साहिब रहिमहुल्लाह ताला से सुना कि तालिब इल्मी के ज़माने में इन दोनों की हालत ऐसी थी कि एक दिन हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहिब रहमतुल्लाहि अलैह बहुत मगमूम नज़र आए। दोनों तालिब इल्म है, पढ़ रहे हैं, दोनों देवबंद में पढ़ रहे हैं, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह के शागिर्द हैं दोनों। तो हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहिब रहमतुल्लाहि अलैह मगमूम नज़र आए तो हज़रत मुफ्ती महमूद साहिब रहमतुल्लाहि अलैह ने पूछा कि खैरियत तो है? तो कहा कि नहीं, एक अजीब बात हुई, रात में नींद में था और मैंने देखा कि मैं चारपाई के ऊपर बैठा हुआ हूँ, अपनी अपने बिस्तर पे बैठा हुआ हूँ और मुताला कर रहा हूँ किताबों का, और पूरे इन्हिमाक के साथ मुताला है, और मुझे किसी ने खिड़की से मुतवज्जह किया अपनी तरफ, लेकिन मैं चूंकि मुताला में मुनहमिक था इसलिए मैंने इल्तिफात नहीं किया। और जब वो साहिब चली गए तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, तो मैं जल्दी जल्दी निकला कि कहाँ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन तशरीफ़ ले जा चुके थे। तो गम मुझे ये हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में इतने करीब आए और मैंने इल्तिफात नहीं किया और मैं ज़ियारत से महरूम रहा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे किसी मेरे बदबातिन की वजह से हो। कोई बुराई ऐसी है? तो हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुरा करके फरमाया कि इसमें फिक्र करने की क्या बात है, आज जब वो तशरीफ लाए दोबारा तो उस वक्त ऐसा मत करना। देखो ना कैसे है, मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह तालिबे इल्मी के ज़माने में ये कह रहे हैं कि आज जब दोबारा तशरीफ ले आए तो ऐसा मत करना। मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह सोए, फिर नींद की आगोश में चले गए, वही मंजर जो गुज़िश्ता कल था, यानी मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात जो है वो सादिक हुई। और इस मरतबा ख्वाब में तो इख्तियार नहीं होता ना इंसान को कि आज अगर ऐसा हो तो ऐसा मत करना, तो आज माशाल्लाह ज़ियारत नबी से भी मुशर्रफ हुई। तो तलबा में भी बात बहुत नेक लोग होते हैं। तो ये जो है इंटरनेट के ज़रिए जो दीन की खिदमत की जाती है, ये मजबूरी के दर्जे में करनी पड़ती है। तालीम तबलीग इंटरनेट के ज़रिए मजबूरी के दर्जे में करनी पड़ती है। और दुनिया में हमारे बुज़ुर्गों में से कोई ऐसा नहीं होगा जो इस शक्ल को आमने सामने वाली शक्ल पर तरजीह देता होगा। लेकिन माला युद्रक कुल्लुहू ला युद्रक कुल्लुहू, किसी न किसी तरह ऐसी ऐसी जगहों पर भी बातें लोगों के कानों में पहुंच जाती है जहां उलमा नहीं है, जहां मसलक हक्का का कोई शख्स नहीं है, तालिबीन पूरी दुनिया में पड़े हुए होते हैं, इसलिए बयानात वगैरह को रिले किया जाता है। लेकिन असल चीज़ तो यही है मेरे अज़ीज़ तलबा, मेरी अज़ीज़ तालिबात, कि हम सोहबत सालेह को ढूंढते रहें ज़िंदगी में, इंटरनेट पर इक्तफा ना कर लें, ढूंढते रहें अपने इलाके में, ज़रा इलाके से बाहर सफ़र करना पड़े तो सफ़र करें, वरना हम महरूम रहेंगे। अल्लाह ताला शानहु मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमावे। वैसे मैंने तो मौलाना अयाज साहिब को पहले भी कहा मगर सरसरी कहा, लेकिन अब मेरा दिल ये कर रहा है कि कभी कभार ऐसा होना चाहिए कि मैंने कहा कि मौलाना हमें हमारे तलबा का दियानत का भी इम्तिहान लेना चाहिए। और दियानत का इम्तिहान लेने का तरीका ये है कि दूसरे तीसरे साल यानी दो तीन साल के बाद एक पर्चा ऐसा हो कि तलबा को कहा जाए कि आप अपनी किताब भी लेकर के बैठें इम्तिहान गाह में, अपनी नोटबुक भी लेकर के जाएं, और पर्चे तकसीम हो जाए, और पर्चे तकसीम होने के बाद उनको दो घंटे की मोहलत दी जाए, और असातिदा निगरानी करने वाले सारे के सारे क्लासरूम से निकल जाए, हॉल से निकल जाए इम्तिहान गाह से, और उनसे कहा जाए कि इम्तिहान है इसलिए किताब और नोटबुक को इस्तेमाल किए बगैर आपको इम्तिहान लिखना है, और ये तुम्हारी दियानत का इम्तिहान है, और इसका रिजल्ट जो है वो तुम जानो, ये तुम्हारी और अल्लाह के दरमियान है। हज़रत मौलाना अबरारुल हक साहिब रहमतुल्लाह अलैह हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए थे, मजलिस दावतुल हक में तशरीफ़ लाते थे। हज़रत मौलाना मोहम्मद अय्यूब साहिब सूरती दामत बरकातुहुम, जो मजलिस दावतुल हक के रूह रवां हैं, वो हज़रत के खलीफ़ा हैं, तो हज़रत की दावत पर तशरीफ़ लाए थे, तो हज़रत की सोहबतें भी मिली उनकी बरकत से, जैसे हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह की सोहबतें मिलती थी उनकी बरकत से, और सोहबतों के साथ कुछ ना कुछ तवज्जो भी मिल जाती है किसी न किसी दर्जे में। तो हज़रत मौलाना अय्यूब साहिब की खिदमत में दरख्वास्त करते थे तो हज़रत मौलाना अय्यूब साहब शफकत फरमाते थे, और जितनी मरतबा भी हकीम साहिब और हज़रत मौलाना अबरारुल हक साहिब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए तो मस्जिद नूर में भी आना हुआ और एकेडमी पर भी आना हुआ। और हज़रत मौलाना अबरारुल हक साहिब रहमतुल्लाह अलैह की बातें बहुत आला और बहुत निराली हुआ करती थी, बहुत आला और बहुत निराली। तो जब तशरीफ़ लाए तो तशरीफ़ लाते ही उमूमन होता ही है कि दर्जे इल्मियत में ले जाते हैं, दिखाते दर्जे इल्मियत हैं, मगर हज़रत के दिल में कुरान मजीद की अज़मत इस दर्जे थी, तो वो फरमाते थे कि भाई कुरान से शुरू करो, कुरान से शुरू करो। अजीब कुरान के साथ लगाव था हज़रत को। इस वक्त तफसील में जाने का मौका नहीं, आप हज़रत के कल इम्तिहान भी हैं, तो हिफ्ज़ क्लास में ले गए, तो हिफ्ज़ क्लास के जो उस्ताद थे हमारे वो गद्दे के ऊपर बैठे हुए थे, और गद्दे के ऊपर बैठे हुए थे और उनके सामने जो है तलबा बैठे हुए थे, और तलबा कुरान मजीद को रहल में लेकर के बैठे हुए थे, टिपाइयाँ नहीं थी। और आज भी हमारे यहाँ हिफ्ज़ क्लास के अंदर रहल ही होती है, टिपाई नहीं होती। तो हज़रत के मिजाज को पहचान कर ऐसा नहीं हुआ था, हमारे यहाँ निज़ाम ही शुरू से ऐसा है, के रहल। अब हजरत का मिजाज ये था कि बादशाह जो है उसका तख्त मुकर्रर होता है और वो दूसरों की नशिस्तों से मुमताज़, और बादशाह जिस तख्त पर बैठता है उसके ऊपर कोई नहीं बैठ सकता। तो हजरत ये फरमाते थे कि कुरान मजीद के लिए रहल जो है ये बमंजले तख्त के है। अब बादशाह को तख्त से हटाकर दूसरी आम कुर्सी के ऊपर नहीं बिठाया जाता। हजरत फरमाते थे कि टिपाई के ऊपर, जिसके ऊपर दूसरी दीनी किताबें पढ़ी जाती है उसके ऊपर कुरान नहीं रखने का, रहल ही हो। और रहल में किसी मस्जिद में भी कोई और किताब देखते थे तो हजरत बहुत नाराज होते थे कि बादशाह के तख्त के ऊपर एक रईयत बैठी हुई है। तो ये तो हजरत को नजर आया कि भाई रहल है, मगर जैसे ही हजरत क्लासरूम में दाखिल हुई वो हजरत ने देखा कि रहल में बच्चे पढ़ रहे हैं और उस्ताद मोहतरम जो है वो गद्दे के ऊपर बैठे हुए हैं। तो हजरत ने बहुत पोलाइटली, बहुत अदब से, इसलिए कि आला दर्जे का अखलाक था, वो तो बच्चे थे उनके लिए उस्ताद, तो कहा कि आप ज़रा एक तरफ हो जाइए। तो एक तरफ हो गए और फिर कहा कि इनके गद्दे के साथ रहल को रखो, मिलाकर रहल को रखा गया। अब वो खड़े खड़े अंदाज़ा नहीं हो पाया कि रहल की बुलंदी ज़्यादा है या गद्दे की बुलंदी ज़्यादा है। हजरत ये देखना चाहते थे कि उस्ताद कुरान से ऊपर तो नहीं, तो बहुत बारीक फ़र्क था, इस वजह से वो पता नहीं चल सका। तो हजरत ने एक साहिब को कहा कि आप नीचे बैठ करके देखो कि रहल की बुलंदी ज़्यादा है या गद्दे की। अब जब उनको बैठने के लिए कहा तो मेरा दिल धड़कने लगा कि हजरत अब सरजनिश फरमाएंगे। मतलब यह है कि बड़ों की तो सरजनिश, डांट, ये बहुत बड़ी नेमत होती है। जो खुश दिली से बड़ों की डांट को कबूल कर लेता है बहुत तरक्कियात होती है उसकी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क था, और फ़र्क में यह था कि रहल की बुलंदी ज़्यादा थी, तो उस पर हज़रत ने इत्मीनान का इजहार किया। तो उस वक्त हज़रत ने जो नसीहतें की असातिदा के अंदर, तो उसमें एक बात यह कही थी कि तलबा का कभी कभी दियानतदारी का इम्तिहान भी ले लिया कीजिए। और उसका तरीका ये है कि कभी कभी बोर्डिंग में 10 पाउंड की नोट छोड़ दीजिए जब तलबा में से कोई ना हो, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, कभी यहाँ छोड़ दी, कभी दरसगाहों में छोड़ दी, कभी इधर छोड़ दी, और हर मर्तबा देखो कि वो नोट मुंतजमीन तक पहुँच रही है या नहीं, वहाँ पड़ी रहती है या नहीं। अगर वो नोट गुम हो जाए तो आपको इतना पता चल जाएगा कि कम से कम मदरसे में एक तालिब इलम तो ऐसा है जो दियानतदार नहीं है। तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत है कि हमारे तलबा की दियानतदारी में कमी है। तो मैंने मौलाना आयाज साहिब को 2-3 मरतबा कहा कि हमें हमारे तलबा का दियानतदारी का इम्तिहान लेना चाहिए, हमें तो पता नहीं चलेगा लेकिन तालिब इलम को तो पता चल जाएगा, उसे तो एहसास होगा कि मेरे अंदर ये कमी है। तो बहरहाल इस मरतबा दियानतदारी का भी खूब इम्तिहान है। अल्लाह ताला शानहु जो है हम सबको अमल की तौफीक दे, आप सब हजरात को बहुत कामयाब करे, और पूरी दुनिया में जितने मदारिस हैं अल्लाह ताला शानहु तालीम व ताल्लुम का सिलसिला जो है वो शुरू करवा दे, और अल्लाह ताला शानहु पूरी दुनिया के तलबा को अपने अवकात को गलत कामों में, बेकार कामों में खर्च करने से बचाए और अच्छे कामों में सर्व करने की उनको तौफीक अता फरमाए। और जो आप हजरात ग्रुप बना करके ऑनलाइन एक दूसरे के साथ तकरार वगैरह कर रहे हों, तो अभी इम्तिहान के ज़माने में भी, इम्तिहान के ज़माने के बाद भी इसका ख्याल रहे कि दूसरी लायानी और दूसरी गलत चीज़ों में आपके अवकात ज़ाय ना हो जाए। आप तालिबीन इल्म है, वक़ार के साथ रहना चाहिए, डिग्निटी के साथ रहना चाहिए, अदब के साथ रहना चाहिए, और जिसके अंदर अदब आ जाता है तो वो फिर कोई गलत काम नहीं कर सकता, इसलिए कि उसे पता होता है कि उस्ताद नहीं है, माँ बाप नहीं है, फलाँ नहीं है, मगर मेरा अल्लाह तो मेरे साथ है। अल्लाह ताला शानहु मुझे आपको अमल की तौफीक दे, खूब कामयाब करे, पूरे आलम के जितने मदारिस हैं सबको अल्लाह ताला शानहु बहुत तरक्यात से मालामाल फरमाएँ और सब रुकावटों को ख़त्म फरमाएँ। दुनिया में ऐसे लाखों तलबा हैं और हज़ारों मदारिस हैं कि जो ऑनलाइन फैसिलिटी से भी ये काम नहीं कर पाएंगे, फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा दीन का नुकसान है, दावत व तबलीग का काम रुका हुआ है, ये बहुत बड़ा दीन का नुकसान है, तज़किर का काम रुका हुआ है, लोगों को दीन की तरफ मुतवज्जे करने का काम रुका हुआ है, खानकाहों में जहाँ इसलाहें होती हैं, बुज़ुर्गों की सोहबतें मिलती हैं, वो काम रुके हुए हैं। तो बहुत अहतमाम से दुआ करेंगे अल्लाह ताला शानो जल्द इस वबा को दूर फरमावे, सारी रुकावटों को ख़त्म फरमावे, और अल्लाह ताला हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाब करे। और बुज़ुर्गान दीन भी जो है एक एक करके उठते चले जा रहे हैं, हमारे दोस्त भी होते हैं वो, और मज़ाहिर उलूम सहारनपुर के दारुल इफ्ता में भी काम करते हैं, हज़रत मौलाना खालिद साहिब जो वहाँ के नाज़िम हज़रत मौलाना सलमान साहिब के भाई हैं, तो उनकी अहलिया का गुज़िश्ता कल इंतकाल हो गया, और वो हज़रत शेख़ुल हदीस मौलाना ज़करिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह की नवासी थी, बहुत नेक खातून थी, और हज़रत मौलाना शाहिद साहिब मुद्दज़िल्लुहुमुल आली जो हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह के नवासे भी हैं, खलीफा भी हैं, और अहम पोजीशन है उनकी वहाँ मज़ाहिर उलूम में, और साहिब कलम है, तो उनकी वो सगी बहन है। तो गुज़िश्ता कल उनका इंतकाल हो, यानी मौलाना खालिद साहिब की अहलिया का, और मौलाना खालिद साहिब के भाई मौलाना सलमान साहिब जो हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह के दामाद भी, हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में वो तरावी पढ़ाया करते थे, बहुत उम्दा कुरान पढ़ते थे, और नाज़िम उलूम ये मज़ाहिर उलूम सहारनपुर के नाज़िम भी थे, और हज़रत मौलाना तलहा साहिब के बाद खानकाह भी वही संभाले हुए थे, सुतून हमारे अकाबिर में से, और ख़ास तौर पर मज़ाहिर उलूम के लिए बहुत अहम सुतून, तो उनका भी इंतकाल हो गया है। सबसे पहली ज़ियारत उनकी उस वक्त हुई थी जब हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह दारुल बरी में तशरीफ़ लाए थे, तो उन्होंने हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह की मौजूदगी में एक बेहतरीन बयान किया था, बहुत मुतासिर में हुआ था उस वक्त, मैं तो बिल्कुल इब्तदाई मरहले का तालिबे इल्म था, और उसके बाद जो है बाद में हज़रत से तआरुफ़ भी हुआ, और हरमैन शरीफ़ैन में मुलाकात होती थी, तो बहुत शफ़क़त फरमाते थे, बहुत दुआएँ भी देते थे, तो अल्लाह ताला शानहु आज उनका इंतकाल हो गया है, तो अल्लाह उनकी मगफ़िरत फरमावे, उनका नेमुल बदल अता फरमावे, मज़ाहिर उलूम सहारनपुर की हिफाजत फरमावे, तमाम मदारिस की हिफाजत फरमावे, और हज़रत मौलाना खालिद साहिब को और मौलाना सलमान साहिब दोनों के ख़ानदान को अल्लाह सब्री जमील अता फरमावे, और मौलाना खालिद साहिब की अहलिया जो हज़रत शेख की नवासी हैं उनको भी अल्लाह रफ़ी दरजात नसीब करे, अल्लाह ताला कबूल फरमावे। व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही अजमईन।